कोई हीरा है कोई पत्थर, धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
नमस्कार दर्शकों, मैं शिल्पा नैतिक मूल्यों की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह ऊपर की ओर फेंका हुआ पत्थर अंतरिक्ष में नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ते हुए ऊपर जाता है, उसी तरह उमंग उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा जीवन में विजय की ओर अग्रसर होता रहता है। क्या आप हमेशा उमंग उत्साह में रह पाते हैं? चलिए आज इसी नैतिक मूल्य पर चर्चा करते हैं, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी नलिनी बहन। नलिनी दीदी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति।
ओम शांति। दर्शकों, मैं इनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी जी पिछले 56 सालों से इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व सेवा केंद्र पर अपने आध्यात्मिक सेवाएं देते आ रहे हैं। ये इस संस्था से जुड़ी हुई बहुत ही पुरानी दीदी है, और यहाँ आने वाली कुमारियों को ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए जो कुमारियां आती है उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी सेवाएं देती है। इन्होंने बहुत देश विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी है। आज हम जिस नैतिक मूल्य की चर्चा कर रहे हैं, उमंग उत्साह, कैसे रहे उमंग उत्साह में, इस नैतिक मूल्य की क्या विशेषता है?
वर्तमान समय में लोगों के जीवन के अंदर निराशा और उदासी बहुत है, और अक्सर सेवा केंद्रों पर भी डिप्रेशन के ही ज्यादा जिज्ञासु आते हैं, और दुनिया के अंदर भी दुख अशांति इतना बढ़ गया है कि लोगों के अंदर उत्साह और उमंग की बहुत कमी पड़ गई है जी। तो मीठे मीठे शिव बाबा ने हम बच्चों को पंख दिए हैं, क्योंकि उत्साह उमंग के निशानी रूप जो है वो पक्षी है, पंखी है जी। तो शिव बाबा ने भी हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया, योग सिखाया, और ये ज्ञान और योग के पंख दे दिए, जिस पंख से हम सभी अपने उत्साह और उमंग के साथ इस विशाल जगत के आकाश में उड़ सकते हैं। अर्थात हमें शिव बाबा ने वो खुशियां दी इस ज्ञान के आधार से और इस योग की शक्तियों से कि हमने अपने जीवन की उदासी, निराशा, ये सभी दुख अशांति सब दूर किया जी। तो ये उत्साह उमंग के हमें पंख प्राप्त हुए, तो हमें ये अंदर में आता है कि ये उत्साह उमंग के पंख सभी को लग जाए
जी। जी, बहुत अच्छा दीदी। लेकिन आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में मनुष्य क्रोध में, आवेश में हार खा बैठता है। बार बार असफल होने से वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। तो हम कैसे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं?
जीवन के अंदर कदम कदम पर ऐसी घड़ियां, परिस्थितियां आती ही रहती हैं। मनुष्य आत्मा को ये तो समझ ही लेना चाहिए कि हमें इन विपरीत परिस्थितियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
बिल्कुल,
और हिम्मत रखनी है। अब हिम्मत भी हमें स्वयं प्रभु देते हैं
जी।
कहते हैं हिम्मते तुम बच्चे, मददे मैं आपका पिता। तो हिम्मत तो रखनी है, हिम्मत रखेंगे तो प्रभु की ओर से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और जीवन में यदि उत्साह नहीं, उमंग नहीं, तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल लगता है
जी।
जीवन में कोई रस पैदा नहीं होते। तो शिव बाबा यह ज्ञान की समझ देते हैं, जिस समझ के आधार पर क्रोध से होने वाले नुकसान और क्रोध न करने से होने वाले फायदे, और जीवन के अंदर शांति को धारण करने से जो प्राप्तियां होती है ना, यदि मनुष्य इस बात को समझ ले कि मेरे जीवन में क्रोध न करने से मुझे कितनी प्राप्तियां होंगी और कितने फायदे होंगे, तो मनुष्य जीवन और मनुष्य ऐसा है कि बिना प्राप्ति के कभी वो मेहनत भी नहीं करता, पुरुषार्थ भी नहीं करता। तो इसीलिए पहले उसे इस बात की जानकारी देते हैं, और जानकारी के आधार पर वो इस बात को स्वीकार करता है और स्वीकार करके वह यहाँ पर आकर के ज्ञान लेता है, योग सीखता है। देखिए हर नैतिक मूल्य जो भी है ना, हर एक का एक दो से कनेक्शन है
जी।
अगर आप कोई एक मूल्य धारण करते हैं तो उसके पीछे जैसे माला बनी हुई है
जी।
जैसे क्रोध को आपको जीतना है तो आपके मन को आपको पहले शांत रखना आवश्यक है। अब मन शांत कैसे होगा तो उसका भी हमें ज्ञान रखना आवश्यक है। फिर वो मन की शांति के लिए जो विधि करनी है हमें वो भी सीखनी आवश्यक है। फिर उस विधि से हमें जो सिद्धि प्राप्त होगी तो वो सिद्धि को जानना भी आवश्यक है। तो हमें हर मूल्य को समझना पड़ता है। तो इस शांति के मूल्य को धारण करने के लिए हमें भी इस ज्ञान के द्वारा मिलने वाले जो अनेक मूल्य हैं उनको भी समझना अति आवश्यक हो जाता है।
लेकिन आज मनुष्य में इतना पेशेंस नहीं रह गया है। जब वो डीमोरलाइज हो जाता है तो सारे मॉरल्स भूल जाता है। ऐसे में हम कैसे हमेशा अपने आप को उमंग और उत्साह में बना के रखें?
जी, शिव बाबा ने हमें बहुत सरल विधियां बताई है और इतना सरल ज्ञान दिया है। और अगर कोई चाहता है कि मैं इसे ही घड़ी मैं अपने अंदर शांति का अनुभव करूं, तो सहज राजयोग की विधि में हमें एक पाठ पढ़ाया गया है जिसमें हमें ये सिखाया गया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा जो इस देह में विराजमान हूँ, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं आत्मा जैसे इस घर में हूँ, शरीर रूपी घर में, ऐसे मुझ आत्मा का जो निवास स्थान है वो शांति धाम है और शांति धाम की निवासी शांति सागर मेरे पिता और मैं स्वयं भी शांत स्वरूप और मैं इस सृष्टि रंगमंच पर आई हूँ अपना शांति का पार्ट प्ले करके और सारे हमारे संबंध में संपर्क में आने वाली आत्माओं को शांति पहुंचाने, न कि अशांति पहुंचाने। तो इस बात को बस हम समझा देते हैं और फिर उनको हम शांति में बिठाते हैं और वो शांति का अनुभव करते हैं।
ये बहुत ही सुंदर अनुभूति है, बहुत अच्छी विचारधारा है ये। तो उमंग उत्साह में रहना ये अंदर से आना चाहिए इंसान के, ये एक मानसिक स्थिति है या हमारे बाहरी क्रियाकलापों का भी इस पर कुछ असर रहता है?
नहीं, ये मानसिक स्थिति है। कहते हैं ना, अपने विचार की धारा को यदि हम परिवर्तित करें, जैसे अभी हम सारा दिन तनावपूर्ण जीवन के अंदर जो भी तनाव की बातें आई हैं, हम उसी के विषय में सोचते रहते हैं
जी।
जैसे लौकिक घरों के अंदर, समाज के अंदर या परिवार में कोई खिटपिट हो गई, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हर्ट कर दिया, हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ, तो हम वही बातें बार बार मन के अंदर रिपीट करते रहते हैं और याद करते रहते हैं। तो ये बातें जो हमारे अंदर रिपीट हो रही हैं, तो इस विचारों को हमें बदलना पड़ता है। तो मनुष्य जो अपने को देह समझ बैठा है तो हम उसे आप देही हो, आत्मा हो, और फिर इस विचारों की हम उसके मन के अंदर स्थापना करते हैं और वो विचार उनको दूसरी नई दिशा देने में मदद रूप बनता है। तो विचार बदलने से, मन के अंदर संकल्पों को बदलने से हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आता है, मन शीतलता आती है।
बिल्कुल,
क्योंकि
बिल्कुल।
मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ये जो शांति का मूल्य है ना, वो हमें पूरा अपने अंदर शीतलता का अनुभव कराता है, पूरा मन प्रदेश हमारा शांत हो जाता है
जी। ये बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है, शांत रहेंगे, जितना साइलेंस की पावर अंदर बढ़ाएंगे बाकी चीजें अपने आप अंदर आती जाएगी। मैं जानना चाहूंगी कि कोई सरल युक्ति, जैसे अभी आपने कहा कि दिशा को चेंज करना होगा, विचारधारा को चेंज करना होगा, तो इसकी कोई सरल युक्ति बताइए ताकि हम उस स्टेटस को, उत्साह के स्टेटस को बना के रख सके, मेंटेन रख सके।
हमारा जो संग है ना, ऐसा संग रखना चाहिए जहां उत्साह की बातें होती हो, पॉजिटिव बातें होती
हो,
जिस पॉजिटिव वातावरण के बीच में हम खुश रह सकें। हमारी जो भी बीती हुई बातें हैं या जो भी दिन भर गुजरी हुई हमारी ऐसी बातें हैं जो हमारी शांति को भंग करती हैं, उनसे हम दूर हो जाएं, हम उस वातावरण से निकल के बाहर आ जाएं, तो हमें एक तो वो संग चाहिए, दूसरा हमारे विचारों के अंदर भी शांति के ही प्रकंपन हम बार बार लाने का यत्न करें, और जिससे भी हम बातचीत करें हम अपने पर अटेंशन भी रखें कि मुझे जिससे भी बात करनी है बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से करनी है, और मुझे उत्साह की बातें करनी है, मुझे निराशा की, उदासी की ये बातें मुझे नहीं करनी है, नहीं तो मेरा इन्फेक्शन उनको लग जाएगा और मुझे भी किसी का इन्फेक्शन ना लगे उसका भी मैं ध्यान रखूं। इसलिए हम एक ऐसा संगीत रखें अपने साथ, संगीत का भी हम सहारा ले सकते हैं, संग का सहारा ले सकते हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, जिसको पढ़ने से हमारे अंदर कुछ करने का उत्साह बने या हमारे अंदर जो निराशा उदासी लाने वाली बातें हैं उनको हम खत्म कर सकें। तो हमें इन सब का सहारा लेकर के और अपने को उत्साह उमंग में रखना चाहिए। साथ साथ हम यदि हमको किसी कला में रस है तो हम उस कला का भी सहारा ले सकते हैं, किसको पेंटिंग का शौक है, किसको कहीं राइडिंग का शौक है, किसको तैरने का शौक है, तो जहाँ शौक है जिसमें हमें खुशी मिलती है, हमारा उत्साह और उमंग उसको जैसे एनर्जी मिलती है वो, तो हमें वो कार्य करना चाहिए।
मैं जानना चाहूंगी फिर भी कुछ क्या बाधाएं ऐसी हो सकती है, क्या नुकसान है अगर हम इस नैतिक मूल्य को इग्नोर करते हैं?
यदि हम उत्साह उमंग में नहीं रहते हैं ना, तो आप अक्सर करके देखेंगे कि निराश व्यक्ति, उदास व्यक्ति जब भी किसी से बातचीत करेगा ना, तो वो निराशा की ही बातें करेगा, उदासी की ही करेगा, उसका चेहरा भी जो है ना वो हर्षित मुख नहीं होगा, मुरझाए हुए फूल की तरह होगा, और मुरझाया हुआ फूल किसे पसंद आता है? हर कोई खिले हुए पुष्प की ओर आगे बढ़ते हैं, और हर्षित होने से हमारी बातचीत भी हर्षित रहेगी, तो हम जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, चाहे वो परिवार का सदस्य क्यों न हो, चाहे कोई अन्य मित्र संबंधी क्यों न हो, जब हम किसी से हंस करके बात करते हैं ना, तो हम जैसे कि उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखते हैं, और जब हम किसी को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते हैं हंस करके, तो हमें भी रिटर्न में वो प्राप्त होता है, तो हमें रिटर्न में हमें भी खुशी मिलती है। तो ये उत्साह और उमंग जो है टोटल वातावरण को भी अपने से प्रभावित करता है। तो हमें हमारे परिवार के अंदर खुशियों से रहना है, खुशियां बांटनी है, जहां भी जाएं हमें खुशियां बांटनी है, और मीठे मीठे बाप दादा यानी शिव बाबा जो हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिक्षाएं देते हैं, तो उस मधुर शिक्षाओं में यही एक मुख्य शिक्षा देते हैं कि आप खुश रहो, खुशियां बांटो, अर्थात उत्साह में रहो, उमंग में रहो, तो उनके अंदर भी उमंग आएगा, उत्साह आएगा। तो ये उमंग उत्साह का जैसे कि खुशी है ना, वो एक फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन हमें पकड़ के रखना आवश्यक है, उसको मजबूत बनाना आवश्यक है।
जी, हम खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, हम जितना पॉजिटिव रहेंगे दूसरे उस वाइब्रेशन से अपने आप पॉजिटिव होंगे और उमंग उत्साह का वातावरण बना रहेगा। जी, मैं थोड़ा इसे बड़े रूप में पूछना चाहूंगी कि दूसरों को हम उमंग उत्साह में कैसे ला सकते हैं, खुद कैसे रहें? आपने हमें बताया कि किस तरह मानसिक शांति अनुभव करके अपने आप को उमंग उत्साह में ला सकते हैं, दूसरे मॉरल्स अपने अंदर धारण करके उमंग उत्साह में ला सकते हैं, हम दूसरों को कैसे सेवा करें?
अब जैसे कभी आपने देखा होगा परिवार का कोई ऐसा शुभ प्रसंग है या कोई सामाजिक ऐसा प्रसंग है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, परंतु हमारा मूड नहीं, हमारा चेहरा भी निराश उदास है, हमें बिल्कुल वहाँ उस महफिल में जाना, बैठना, इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? निरुत्साही बन करके एक कोना पकड़ लेंगे या किसी कोने में जाके खड़े हो जाएंगे और दूर से बस ऐसे बड़ी मजबूरी से जबरदस्ती कोई हमें खींच के लाया हो, हम वहाँ खड़े रहेंगे और देखेंगे। ना हम महफिल से जा पाते हैं, ना हम महफिल में रह पाते हैं। तो ऐसे वक्त पर यदि मेरे में फुल उत्साह है, उमंग है, तो मेरा काम है मैं उसको पकड़ करके और अपने साथ उस खुशियों में शामिल करूं।
जी।
उसका दिल नहीं है, पर हम उसको उस समय जबरदस्ती पहले लेके आए, हम उसको उसमें शामिल करें। शामिल करने से धीरे धीरे वो उत्साह उमंग का जो प्रभाव है ना, वो वातावरण का जो प्रभाव है वो उसको उत्साह और उमंग में लाता है। तो हमें ये यत्न करना चाहिए। फिर उसको उत्साह उमंग के फायदे नुकसान भी हम उसको थोड़ा शॉर्ट में उस समय हम समझा भी सकते हैं कि भाई हम सबके बीच में हैं, इस प्रसंग के लिए स्पेशली हम आए हैं, हमें बुलाया गया है, तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर खुशी को लाना है, उनके लिए भी लाना है। उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, तो हमें भी यत्न करनी चाहिए। हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि भाई वो निरुत्साही है तो छोड़ दो उसको, उसकी रीति से जीने दो। नहीं, वो आया है महफिल के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गहराई में वो ये चाहता है कि मेरी तनावपूर्ण परिस्थिति से मैं बाहर निकलूं, और इसीलिए वो जबरदस्ती अपने को लेके आया महफिल में। तो हमारा काम है उसको जैसे कोई डूबते हुए को बचाया जाता है, ऐसे उस तनावपूर्ण सागर के अंदर वो जो डूबा हुआ है हम उसको निकाल के बाहर करें और उसको उत्साह उमंग में लाएं।
जी जी। शारीरिक हम क्या ऐसे क्रियाकलाप करें, जैसे मेडिटेशन, जैसे आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़ी हुई हैं, तो आप इसे उस प्रकार भी बता सकती हैं कि मेडिटेशन या फिर और कुछ ऐसे क्या कर सकते हैं?
मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट उसका उपाय है।
जी।
यदि मेडिटेशन कोई सीख ले तो जब भी निराश उदास हो जाए तो जो बाबा हमें फुल उत्साह और उमंग देते हैं, भरते हैं, तो हम बाबा से कम्युनिकेट करें।
जी।
बाबा से बातें करें तो ऑटोमेटिकली बाबा से हमें उत्साह उमंग के स्रोत आते हैं और हम फुल अपने बॉडी के अंदर रग रग में, कण कण में, रोम रोम में उसका अनुभव करते हैं। मीठे मीठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को कहते हैं, जब उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, ना हिम्मत हो जाते हो, तो आप गीत बजाओ, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ऐसे गीत बजाने से हमारे अंदर वो उमंग भरता
जोश आता है,
जोश भरता है। तो हम संगीत का भी सहारा ले सकते हैं, गीतों का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो अनुभवी आत्माएं हैं, जिन अनुभवी आत्माओं के द्वारा हम अपने तनावपूर्ण स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं, तो हम उनके पास जाके बैठें, उनका संग करें और उनसे हम कुछ ऐसी युक्तियां लें जिन युक्तियों को लेकर के हम अपने इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते।
जी, संबंध संपर्क भी एक बहुत बड़ी
बिल्कुल
जरिया है उमंग उत्साह में रहने का। जी, मैं चाहूंगी कि हम इस नैतिक मूल्य की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके फायदे और नुकसान दोनों आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए।
मूल्य हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, लक्ष्य पूर्ण बनाता है, आदर्श बनाता है। उस मूल्य के आधार पर हम स्वयं प्रिय भी बनते हैं, लोकप्रिय भी बनते हैं और प्रभु प्रिय भी बनते हैं। और इस मूल्यों को धारण करने से हम एक अमूल्य बन जाते हैं।
जी।
और अमूल्य बनने के कारण हमें प्रभु से जो जीवन वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है उसके लिए कभी भी कोई फरियाद प्रभु के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए हमारे पास नहीं रहती।
जी।
तो हमारा जीवन हमें पूर्ण महसूस होता है, यानी हम अपनी मंजिल को जैसे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे हम अंदर में पूर्ण रूप से संतुष्टता की फीलिंग्स में रहते हैं। तो ये हुए उसके फायदे। अब हमें नुकसान को भी जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि नुकसान को जानने से हम अपने कर्मों में सावधान रहेंगे
जी, बिल्कुल,
क्योंकि जरूर हम कोई कर्म ऐसे करते हैं जिन कर्मों को करना नहीं चाहिए, जो कायदे के विरुद्ध हैं, क्योंकि उत्साह और उमंग ये हमारी आंतरिक भावनाएं हैं, हमारी मानसिक स्थिति है, तो ये कुदरत की देन है। कुदरत हमें उत्साह और उमंग में साथ देती है और हमें आगे बढ़ाती है, तो इसीलिए हमें इस उत्साह और उमंग के नुकसान ये समझ लेना है कि एक तो हम कुदरत का नियम तोड़ते हैं, दूसरा हम स्वयं को भी तोड़ते हैं
जी।
जो स्वयं को तोड़ देता है उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम स्वयं को तोड़ते हैं। स्वयं को तोड़ने के साथ साथ हम अपने मित्र संबंधियों को भी निरुत्साह में आकर के कभी हम उनको कटु वचन भी कह लेते, न कहने के बोल भी कह लेते, तो हमारी मधुर वाणी नष्ट होती है, हमारा चेहरा जो हर्षित मुख होना चाहिए, हर कोई हमारे से बातचीत करने में हिचकता है, हमसे दूर रहते हैं, तो ऐसे कई हमें
नुकसान
होते हैं, वातावरण भी खराब होता है, और कोई हमें अपना संगी साथी बनाना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई अपने जीवन के अंदर उत्साही व्यक्ति को पसंद करता, जो उमंग वाली व्यक्ति होती है उसे पसंद करता, क्योंकि निराशावादी उनके ऊपर हर कोई को मेहनत करनी पड़ती है और कोई मेहनत करने को तैयार नहीं, क्योंकि स्वयं वो मेहनत नहीं कर रहा, इसीलिए वो निराश हुआ है, उदास हुआ है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को इतना सरल कर्मों में सरलता के साथ मूल्यों को अपनाते हुए चलने का सदैव यत्न करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें बहुत मूल्यवान यह जीवन वरदान के रूप में दिया है, तो हमें उसे सफल करना चाहिए मूल्यों को धारण करके।
जी जी दीदी, आपने अभी सरलता की बात की, तो उमंग उत्साह में रहना क्या इतना भी सरल है? क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, उमंग उत्साह में जोश में हम गलत कदम भी उठा सकते हैं, दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं, वहां पर इंसान अगर अंतर ना कर पाए तो गड़बड़ हो सकती है, तो वहां पर हम कैसे?
सरलता तो बिल्कुल बहते हुए जल के जैसी है
जी।
और सरलता जिस व्यक्ति के पास है वो बिल्कुल पारदर्शक होते हैं, तो हमें अपने जीवन के अंदर एक और मूल्य को अपनाना पड़े, जिस मूल्य को बाबा के शब्दों में कहूँ तो वो है साफ दिल, सच्चे दिल रखना। किसी से भी हमारा मन मुटाव यदि हो गया, किसी से कोई खिटपिट हो गई जिसकी वजह से हम सारा दिन तनाव में रहते हैं, तो हम उनके साथ बातचीत करें
जी।
हम वहाँ संकोच न करें, हम वहाँ पर ऐसा देह अभिमान में न आए कि ये बड़े हैं, हम इनसे क्या बात करें, कैसे बात करें, हमारा दिल तो दुखा दिया, अब ये बड़ों को अपने आप समझना चाहिए, हम उनके प्रति गलत सोचें, गलत फहमियों में आए, बजाय इसके अच्छा ये होता है कि हम उनसे सरलता से बात करें कि आपने हमें ऐसे कह दिया, जिसने हमें दुखाया, जिसने हमें निराश किया, उदास किया, वही हमारी दवाई बनते हैं
जी।
वैसे भी देखा जाए जो हमारा बीमारी का कारण होता है ना, वही हमारा निवारण भी होता है, तो इसीलिए हमें निवारण के लिए उन्हीं व्यक्तियों से हमें बातचीत करने का अभ्यास रखना चाहिए, यानी खुले दिल से हम हर एक से मिले, खुले दिल से हम बातचीत करें, और खुले दिल से यदि मेरे से भी कोई गलती हो जाती है, यदि मैं भी कहीं आपको कुछ कह देती हूँ, तो हमें उसकी दिल से क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। ऐसे नहीं औपचारिकता में हम कह दें सॉरी, ये जो हमारे पास एक शब्द बड़ा सरल मिल गया है औपचारिकता को लाने के लिए, छोटी छोटी बातों में हमने सॉरी कह दिया, लेकिन सिर्फ सॉरी कहने से ना उदासी निकलती है, ना निराशा जाती है, ना हमारे मन मुटाव की जो बात होती है वो बात समाप्त होती है, परंतु सॉरी हमारा दिल से निकलना चाहिए, तो हम दिल से उनसे कम्युनिकेट करें। तो मेरे ख्याल से ये सरलता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उदासी और निराशा जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि कारण का पता चल जाता है, और सामने वाली व्यक्ति को जब हमारी नेचर का पता चल जाता है कि मेरे इस प्रकार के व्यवहार से इनको बुरा लगा, तो आइंदा मैं भी ऐसा न करूं, न व्यवहार करूं, और वो भी हमें संभालेंगे और हम भी स्वयं को कम्युनिकेट करके जैसे कि स्वयं की रक्षा कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से हमारी रक्षा हो जाती है। तो ये एक हमें बहुत बड़ी मदद जीवन के अंदर मिल जाती है।
दीदी, जैसे अभी आपने सरलता की बात की, लेकिन ये इतना सरल कैसे है उमंग उत्साह में रहना? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में अच्छे और बुरे का अंतर न कर पाए और नेगेटिव कदम भी उठा सकता है, उठा ले, तो ऐसे में हम कैसे मेंटेन करेंगे उस चीज को?
तो शांति से हम समझाएं, क्योंकि वो उत्साह उमंग में है। विवेक के ऊपर भी उत्साह उमंग का इतना प्रभाव है कि वो विवेक अपना चला नहीं पाता है उस समय। उस समय वो उत्साह और उमंग उसे जिस दिशा में ले जाता है वो वहां जा रहा है। तो उसको विवेक की ओर हमें ले आना पड़ता है कि विवेक क्या कहता है।
आपका अनुभव सुन के हम भी उमंग उत्साह में आ रहे हैं। आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और बहुत ही सरल सुंदर शब्दों में प्रेरणादायक अनुभव सुनाते हुए इतने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए इस नैतिक मूल्य पर, हम सबको बहुत ही प्रभावित किया। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आज की चर्चा से आपने सुना, समझा और जाना होगा कि किस तरह नलिनी दीदी ने इतने सुंदर शब्दों में उमंग उत्साह में रहने के तरीके बताए, इसके नुकसान और फायदों से हमें अवगत कराया और हमें ये सिखाया कि किस तरह पॉजिटिव रहकर हम अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाते हुए, खुद भी उमंग उत्साह में रहते हुए, सबको उमंग उत्साह में लाते हुए इस जीवन को खुशी खुशी जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की देन है, ये जीवन ईश्वर की देन है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस चर्चा से फायदा हुआ होगा। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, अगले अंक में हम फिर से नई शख्सियत के साथ, नए नैतिक मूल्य के साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में अंतर।